کافروں کی کیا خواہشات ہیں؟ اللہ 55 میں فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یعنی اب ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، جن کو اس کتاب سے شک ہے نا وہ نہیں بدلیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ اب نعمتوں والی ان باتیں سن کے رویا کرے، ایک وقت آتا ہے جہنم کی آیتوں پہ رونا آتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جب بندے کا معاملہ بگڑا ہوتا ہے اللہ سے، بھائی اللہ میں نے اس آگ میں جانا ہے، اللہ میرے منہ کی کھال اس طرح آگ میں گرے گی، پھر آہستہ آہستہ بندہ ڈرتا ہے تو کوشش بھی کرتا ہے بچنے کی، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب نعمتوں کا ذکر جنتوں کا سن کے دل کو یقین اور ہوتا جانا ہے تو پھر بندہ رو پڑتا ہے اللہ میں نے جانا ہے جنت میں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کو عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ قربانیاں دینے والے مکہ میں تڑپ رہے تھے لوگ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، کہا غم نہ کرو اللہ تمہاری قربانیاں ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ ہائی لائٹ کریے گا ذرا اس کو، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ان کو ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے عموماً ایک مس کنسپشن ہے، اس کو نوٹ کریں، ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے اور وہ کیا ہے کہ ہمیں وہ جنت ملے گی جو اللہ ہمارے لیے پسند کریں گے نا، یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنی خوشی سے جو دے گا، یا کہتے ہیں عبادت کرو تاکہ اللہ خوش ہو، معروف جملہ ہے ہمارا۔ اب بات اپوزٹ ہے، سورۃ طہٰ کی ایک آیت گزری اس میں کیا آتا ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی یہ کالا مقام ہے بندگی کا کہ عبادت یہ سوچ کے تو بندہ کرتے ہی کہ اللہ خوش ہو، بلکہ اس سے زیادہ وہ بندے کی اپنی خوشی بن چکی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے ملے گی۔ اور یہاں کیا ہے کہ تمہیں وہ جنت ملے گی جس کو تم پاؤ گے، یہ ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اب یہ بتا تیری رضا کیا اس کو اس جملے کے ساتھ سنیے کہ یردو نہ ہو، سب کو تو لوگ دے دیتے اپنی پسند کی چیزیں، کیونکہ دینی ہے دے دی، خانہ پوری کر دی، اور کسی سے بڑی محبت ہو اور تڑپ ہو کہ میری دی ہوئی چیز وہ استعمال بھی کرے تو کیا کہتے ہیں، اور قریب کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے آپ بتائیں میں آپ کو کیا دوں، آپ کو کیا پسند ہے، لیکن جو میں نے آپ کو دینا ہے پھر وہ آپ نے خود پہننا ہے، یہی انداز لگ رہا ہے کہ تم نے میری پسند کی زندگی بسر کی، اب تم بتاؤ تمہیں عدن چاہیے کہ تمہیں مولا چاہیے کہ تمہیں فردوس چاہیے کہ تمہیں نعیم چاہیے کہ ماوا چاہیے، میں تمہاری پسند کی جنت میں تمہیں موو کر دوں گا۔ دنیا میں کئی جگہ ہوتی ہے نا، کسی کو کوئی ایک علاقہ پسند ہے، کسی کو کوئی ایک علاقہ، اللہ چوز کروائے گا بتاؤ کس ایریے میں تم جنت میں رہنا چاہتی ہو، آپ کہاں جائیں گے جیرم، آپ کہاں جائیں گی، کس جنت میں جائیں گی، سی ویو، آپ کہاں جائیں گی، سوچے ہی نہیں کبھی، جی آپ آریا کہاں جائیں گی، میں تو پہاڑوں والی جنت میں جاؤں گی جس میں پہاڑ بھی ہو، پھل ہو، پھول ہو، یعنی بس وہاں وہ سب ہو جس کو دیکھ کر اب یاد آ جائے، مجھے پلین علاقوں سے زیادہ پہاڑ اچھے لگتے ہیں، کہیں بھی جاتی ہوں نئے ملک میں جب بھی تو لوگ بلاتے ہیں تو میں دل میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے وہاں پہاڑ ہو، بہت اچھے لگتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ سرسبز پہاڑ ہو اور اس کے اوپر کیا اللہ کے رنگ ہے۔ آپ آرڈر دے دیں اللہ کو، آج بھی دے دیں گھر جا کے، نو پرابلم، چھوٹا سا ایک پلیس کر کے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آئی لائک دس ایریا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، ہاں ہماری اوقات ایسی، لیکن خواہش تو کر سکتے ہیں نا، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، یہ تو ان کا حال ہے، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ اتنی بڑی حقیقت ہے اس میں، تم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر کے دیکھو، اللہ تمہارے بدلے لے گا ان سے، مدد تمہاری تب آئے گی جب تم اللہ کے لیے کسی کو معاف کرو گے۔ یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع بصیر ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں، جنہیں لوگ چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف ان خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ سوچیے بہت دن سے نہیں سوچا، صرف آسمان کی چیزیں نہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ تو پھر آپ اس سے تعلق لگا کر آپ کتنے امیر ہو جاتے ہیں، देखिए सीधे से घर में एक सफेद पोश फैमिली की लड़की की शादी जब किसी अमीर लड़के से होती है ना, तो वो सब अमीर लड़के का जो स्टेटस होता है एक वक्त आता है सब उसका हो जाता है। मिसिस बोला, बैंक का अकाउंट उसके पास, गाड़ी की चाबियां उसके पास। तो एक दौलतमंद से शादी होती है तो और लड़की को सब कुछ मिल जाए। तो जिसका रब से मामला जुड़े, लोग पूछते पैसे हैं कुछ बैंक में, कुछ है जिससे बात करें? हाँ है, करोड़ों के अरबों है उस रब के पास जिसके नाम पर ये काम हो रहे हैं। कभी लोगों को नजर में ना रखे, कभी अपने बैंक बैलेंस को मत देखे कि क्या है, अब इसकी बेस पे काम शुरू करते हैं, ये तो शिर्क हो जाता है। हाँ बहुत कुछ है रब के पास, सिर्फ ये यकीन आ जाए कि वाले अल्लाह ही माफिस समावाती बमा बिलर, अल्लाह पे नजरें लगाना सीखेंगे, अल्लाह आपको मखलूक से बेनियाज कर देगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि इसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसखर कर रखा है जो जमीन में? क्या कुछ उसने हम न शुक्रों को दिया, और उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया। जब कश्ती कायदे की पाबंद है तो हम नहीं बन सकते? यानी कश्ती एक रूल के मुताबिक चलती है तो हम कैसे रूल्स को फिर पीछे कर सकते हैं? और वो इसके हुक्म से समंदर में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए कि इसके इज़्ज़त के बगैर वो जमीन पर गिर ही नहीं सकता। वाकया ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा शफीक और रहीम है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, वही तुमको मौत देता है, वही फिर तुमको जिंदा करेगा। लेकिन सच है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सच है कि झूठ, हक का इनकार करता है। लिकुल्ली उम्मतिन जालना मन सका। अब सूरत का इख्तिताम है। उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या काम दिए। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत मुकर्रर किया जिसकी पैरवी वो करती है। बस ए नबी, वो इस मामले में आपसे झगड़ा न करें, आप अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो आपसे झगड़ा करें तो कह दो, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है, अल्लाह क़यामत के रोज तुम्हारे दरमियान इन सब बातों का फैसला करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं हो कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म है? सब कुछ एक किताब में दर्ज है, और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल मेरे रब के लिए? तो फिर मायूसी किस बात की? शिर्क का रद्द। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए ना तो इसने कोई सनत नासिल की और न ये खुद उसके बारे में कोई इल्म रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। और जब इनको हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। इसको हाईलाइट करें। आप तो खुशी खुशी कुरान की कोई बात सुनाते हैं ना लोगों को, लेकिन जिनका भी अपना अमल नहीं होता ना, उनके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं आपको देखकर। और ऐसा महसूस होता है क्या कि यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, कि अभी वो इन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयात सुनाते हैं। बहुत बुरे लगते हैं उनको अल्लाह की आयतें सुनाने वाले। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बदतर चीज क्या है। यानी तुम्हें ये कुरान सुन के गुस्सा आ रहा है, अल्लाह की आयतें बुरी लगती है, तो इससे बदतर चीज क्या है? अन्नार। आप जरा अरबी में टेक्स्ट में देखिएगा, जालिकुम के बाद भी तो है और अन्नार के बाद भी तो है। ये अन्नार सिर्फ एक लफ्ज में बात कर दी, ये नहीं कहा कि ये आग है, हाज़िहिन्नार ये नहीं कहा, अन्नार बस चोट पड़ी। तुम्हें बदतर से बदतर चीज क्या है? आग। कौन सी? अल्लाह ने इसी का वादा इन लोगों के हक में कर रखा है जो कबूले हक से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब इसी शिर्क को समझाने की मिसाल गौर से सुनिएगा। अगर मक्खी कभी नहीं देखी तो फिर तो आप समझेंगे नहीं। कोई है सा जिसने मक्खी ना देखी हो? इधर भी है। लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। सुन रहे? जिन माबूदों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब वो लकड़ी के पत्थर के बुत नहीं कहे, सब लोग सारे इंसान जिनको अल्लाह के माँ सिवा माने, तागूत अल्लाह के रास्तों से रोकने वाले, हमें अल्लाह के दीन से हटाने वाले, सब लोग मिलकर एक मक्खी पैदा करना चाहे तो कर सकते हैं। बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो इसे छोड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर, और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। दे पत्ता लिबुअल मतलूब, यानी मुशरिक भी कमजोर और शिर्क जिसके नाम पे कर रहा है वो भी कमजोर। सारे कमजोर है क्योंकि इंसान है। और बात क्या है, शिर्क करता कौन है आपको पता? जिसको अल्लाह की कदर नहीं होती। इसीलिए कहा, मां कदर अल्लाह हक का कदरी, लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जो उसकी कदर का हक था। वाकया ये कि कुव्वत और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। पीछे कितनी अल्लाह की कुदरत की बातें थी, और यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी कदर नहीं है ना। देखिए सिंपल सी बात है कि आपके माँ बाप आपकी जरूरियात पूरी करते हैं, आप उनको छोड़कर उनके दोस्तों या अपने अब्बू के फ्रेंड से कहें कि जरा मुझे कुछ पैसे दे दें, तो किस बात का इजहार है? क्या आपने अपने वालिद की कदर नहीं की? शोहर जरूरत का पूरा कर दे बीवी की खर्चे को और बीवी फिर उसकी बजाय किसी और से मांगे, तो हम क्या कहेंगे? किसने अपने शोहर की कदर नहीं की? और कोई शोहर की कदर ना करे तो 10 लोग उसको बुरा कहते हैं। कोई माँ बाप का ना शुक्रा बन जाए तो उस बच्चे को हर आने जाने वाला समझाता है, ऐसा ना किया करो, ऐसे ना करो। और जब लोग अल्लाह की कदर ना करें तो कहते हैं कि रिलीजन इज योर ओन मैटर, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन। हैरत की बात है ना, आज हमारे दिल में कोई तड़प नहीं है, यह इल्ला माशाल्लाह जितनी भी है, कि हम लोगों को रब से जोड़े जो कटे हुए है, इधर उधर है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस कदर की हद कर दो, और वो कैसे करो? इस काम के लिए चुने जाओ। इतनी प्यारी आयतों पे सूरत पूरी हो रही है कि मेरा ख्याल है कि उम्मत मुस्लिमा को अगर सिर्फ ये आयतें समझ आ जाए तो उनकी जिंदगी में खुशी शामिल हो जाए कि अल्लाह ताला हमें कितने बड़े काम देता है। फरिश्तों की बात करके फिर उम्मत पे बात जाएगी। फरमाया अल्लाह यस्तवी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। हकीकत है कि अल्लाह अपने फरामीन को पहुंचाने के लिए फरिश्तों में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है। किसको का? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, और इंसानों में से भी। इस एक आयत के ऊपर तो सर सजदे में रख दें अगर अल्लाह आपसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचवा रहा है किसी भी जरिए से, या बोल के या पहुंचवा के या वहां के इंतजाम के लिए। फरिश्तों से जो काम अल्लाह ने लिया उसको इंसानों में ला रहा है कि इंसानों को अल्लाह चुन लेता है कि अल्लाह की बातें लोगों को बताए। इससे बड़ी की ऑनर है। आज लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ नाम जोड़ के खुश होते हैं, वहां जॉब मिल गई, उनसे हमारा अलायंस है और उससे हम जुड़े हुए हैं और एफिलिएटेड है। लेकिन जब अल्लाह के दिन के हम काम करते हैं तो लोग कहते हैं मुल्ला बन गए, मौलवी बन गए, ये क्या इन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। इतनी खुशकिस्मती है अगर आप किसी भी जगह इस काम पे तो कह अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं अपनी इस जॉब पे बड़ी खुश हूँ। वो समी और बसीर है, वो सुनता भी है, जानता है, उसको पता है कि आप किस हद तक करते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। जो कुछ इनके सामने इसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे उछाला इससे भी वो वाकिफ है, और सारे मामला उसी की तरफ रजू होते हैं। करो क्या? सूरत के आखिर में आप देखिए कि उम्मत को चार नुकाती नुकता दिया जा रहा है। पूरी सूरत का थीम उम्मत मुस्लिमा वो क्या करे। या अय्युहल्लज़ीना मनुर कौ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सिर्फ इतना ही नहीं, वजाहिदू फिल्लाही हक्क जिहादी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बड़े गौर से देखिएगा, इसमें आपको एक बहुत बड़ी हकीकत समझ आएगी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो। ये सब तो समझ आ रहे हैं ना? क्या होगा? शायद कि तुमको फलाह नसीब हो जाए। यहाँ फलाह की बात है और आप देखिए अगला पारा फलाह से शुरू हो रहा है। कामयाब होना चाहते हो, यू वॉन्ट सक्सेस, तो ये करो। खत्म नहीं, अगला काम बड़ा मुश्किल है जो हमें अमूमन याद नहीं रहता, और वो क्या के वजाहिदू फिल्लाही हक जिहादी। अल्लाह की राह में जिहाद करो, मेहनत करो, खुद को खपा दो, जैसा कि जिहाद करने का हुक्म है। क्यों भाई, हम क्यों करें अल्लाह के रास्ते में मेहनत? तो अल्लाह कहते देखो मैंने तुम्हें क्या दिया, हुवज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया, खुशियां मनाओ, तुम्हारा चुनाव हो गया। मुसलमानों तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया, रिसालत की कड़ी में तुम्हें एक चेन जुड़ गए। पहले तो अल्लाह और फरिश्ते के बाद नबी था, फिर मखलूक थी। अल्लाह ने अल्लाह के बाद फरिश्ते और नबी के बाद तुम्हें उसमें एक तीसरा लिंक बना के जोड़ दिया। हुवज्तबाकुम, खुशियां मनाओ, अल्लाह ने तुम्हें चुना। कितने लोग हैं जो अपने इस चुनाव पे खुश होते हैं? अल्लाह कितने थोड़े लोगों को इस खिदमत के लिए चुनता है। सूरह बकरा 143 में कहा वजअलनाकुम उम्मतन वसता। सूरह आले इमरान 110 में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और यहाँ बता दिया हुवज्तबाकुम। कितने लोग हैं जिस चुनाव पे वही खुशी करें जो आमतौर पे होती है। आप देखिए कि बच्चे पास होते हैं ना, पास से मुराद इंग्लिश का पास, उर्दू वाला पास तो बच्चे अब कम ही होते हैं, दूर दूर ही रहते हैं हमसे। लेकिन जब बच्चे पास होते हैं तो क्या होता है? कामयाबी होती, खुशी होती है, फिर मुबारकबाद होती है। सबको पता है मैट्रिक का रिजल्ट निकला है और आपका बच्चा भी था, फिर आप कहते हैं इसने 700 नंबर लिए, जो लिए, मुबारकबादें होती है। ग्रेजुएशन होती है, यहाँ का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अमेरिका में तो ग्रेजुएशन पे कहते हैं जाओ किसी की, उसकी शादी पे जाओ ना जाओ। यानी दूसरे शहरों में जितने लोग सफर करते हैं ना अमेरिका में, एक दूसरे के एक शहर से दूसरे में, खास सीजन में, तो उसमें 90% लोग सिर्फ अपने बच्चों या अपने बच्चों के दोस्तों के ग्रेजुएशन पे जाते हैं। तो जब दीन के काम में आप कामयाबी हासिल करें तो कितनी मुबारकबादें मिलती हैं। फिर कितने लोग कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत सक्सेस, बहुत कामयाब। ये आज हमारा रोग है कि दीन की कामयाबियों पर कहते हैं बस अब बहुत पढ़ लिया, घर बैठो, तुमने कोई टीचर नहीं कहीं लगना। तो लगते हो अच तबाह को, तुम्हें चुना दीन के काम के लिए, इससे बड़ी मुबारकबाद क्या? आंसू नहीं आ जाते कि जब लोग आपके चुनाव पे कोई खुशी नहीं मनाते, आप कहते हैं आइए हमारे 10 पारों की तकमील की पार्टी, हम आपको खाना खिलाते हैं, आप सोचते हैं 50-60 तो आएंगे मेरे दोस्त, और उसमें 4-5 भी आ जाएं तो आपके आंसू नहीं रुकते कि बाकी क्यों नहीं आ रहे, कदर ही कोई नहीं। इस चुनाव की किसको खुशी है? उसको खुशी है जिसको वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी के मुताबिक अल्लाह की कदर होगी। डरते क्यों हो? मुश्किल दीन नहीं है। वमा जाल अलैकुम फिर दीन मिन हरज, दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, इतना रिलैक्स दीन है। दूर से लगता है ये बहुत बड़ा गठड़ है, लोग कहते हैं हाय आपका सांस नहीं घुटता, पसीना नहीं आता, ब्लड प्रेशर नहीं हाई हो जाता, आके तो देखो, करके तो देखो। लोग कहते हैं सुबह शाम भागते हैं आप लोग, ये करते हैं वो करते हैं, आके तो देखो। देखिए आपने कभी किसी को देखो दूर से कोई आ रहा है उसके सर पे बहुत बड़ा गठड़ है तो आपको तरस आएगा ना, उसपे धूप भी और इतना बड़ा गठड़ लेके खड़ा। जब आपके पास आए तो आपके जरा रुकने, वो रुकने लगे तो आप कहते लो मैं जरा मदद करूं, वो कहते नहीं नो प्रॉब्लम। हाथ लगाते हैं तो वो पता चलता है वो तो स्टीरियोफोम है या वो रुई का गठल था, वजन भी कोई नहीं। आप कहते अच्छा मैं समझिए आपके सर पे बहुत बोझ है, ये तो इतना फ्लफी सा आपने अपने सर पे कोई बोझ पकड़ा हुआ है। ये है दीन, दूर से ये लगता है सर पे लकड़ियां और पत्थर और पता नहीं क्या को इंटे उठाई हुई है, करीब आए तो ये ठंडा हल्का, बल्कि धूप से भी बचा लेता है। लोग तो सारे आम सर मुंह खोल के फिरते हैं ना धूप में, फिर सर में दर्द होता है, लेकिन जो अपने आप को छुपा लेते हैं, उड़ा लेते हैं, वो उस सारी गर्मी से बचते हैं। तो अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बता रहे रोते क्यों हो, तुम्हारा दीन मुश्किल नहीं है। सूरत बकरा के भी एंड पे यही कहा था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है। मेरा और आपका ताल्लुक किससे, हमारा मसलक क्या है? मिल्लत इब्राहिम। अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मैं अपने बाप इब्राहिम के दीन पे हूँ। और नाम क्या होना चाहिए तुम्हारा? अनफी ब्रेलवी शाफई मालकी? नहीं, हुवा सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था। कब? मिन कब्लु वफी हाजा, इस कुरान से पहले यानी पिछली उम्मतों में भी और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। तो आज से मेरा और आपका क्या नाम है? मुसलमान। इसके बाद के साहब के इलाके सब बात की पैदावार है, यही वो लफ्ज है जो उम्मत को आज भी जोड़ेगा। सारे इख्तलाफात का हल एक है कि सब लफ्ज मुस्लिम पे जम जाएं, क्योंकि इसको सब मानते हैं, वरना लोग दूसरे फिरके गिरोह को तो नहीं मानेंगे। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम वतकून शुहदा अलन्नास, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो। बस नमाज कायम करो, जकात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ। वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, लिपट जाओ। कैसे? कोई सामने हो तो उससे बंदा लिपटे, अल्लाह से बंदा कैसे जुड़ सकता है? अल्लाह से कैसे अपने आप को वाबस्ता कर ले? अल्लाह की किताब से जुड़ जाओ। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह का दामन मजबूती से थामो। हिदायत मिलेगी इस रब से मिलेगी, इस किताब से मिलेगी, कानून मिलेगा इधर से। कभी प्यार से पुकारो, कभी खौफ से पुकारो, उम्मीदें लगाओ, मदद के लिए उसके आगे हाथ फैलाओ, तवक्कुल और इनाबत उस रब के लिए करो क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया। हमें किसी और से लिपटने की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर, कौन है वो? हुवा मौलाकुम फनेमल मौला वनेमन नसीर, और वो है तुम्हारा मौला और बहुत ही अच्छा मौला और बेहतरीन मददगार। ये 4 काम कर ले उम्मत तो फिर आज भी कामयाबी है। आपने ढूंढने इसमें से अलग करने, लेकिन आप देखिए कि पूरे पारे का ये क्लाइमेक्स था। इस पूरी सूरत में आपको क्या मिला? जो अल्लाह के काम की मदद, अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। और जब इक्तदार मिल जाए तो फिर नमाज कायम करो, जकात दो, मारूफ का हुक्म दो, मुनकर से रोको। हम सबको क्या फिक्र होनी चाहिए कि हम अल्लाह के दीन की मदद कैसे करें, कब करें? मदद तो आनी है। फिर आप देखिए सूरत में हमने पढ़ा कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। दुआ कीजिए, अब छोटे छोटे हमारे लिए होमवर्क है कि मुझे चेक करवानी है अपनी आई साइट, कहीं मेरे दिल की आंखें अंधी तो नहीं हो गई। मैं बाहर की आंखों को तो हम कई दफा डॉक्टरों के पास जाके चेक कराते हैं, दिल की आंखें कौन चेक करते हैं? रूहानी वालिज जो दीन सीखते और सिखाते हैं। क्योंकि जब दिल अंधे होते हैं ना, हक नजर नहीं आता। ये एक क्राइटेरियन रख ले, मुझे हक नजर आता है, اور یاد رکھیے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اللہ اس کو چنے گا. اگر آپ دیکھیں اس میں ایک لمبی لسٹ بنائیں گے آپ کہ کامیاب ہونے والوں کے لیے کیا, اور اس کو اگلے پارے کی لسٹ کے ساتھ جوڑیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک بہترین مجموعہ جمع ہو جائے گا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پھر ان کو کیا چاہیے. ایمان لائیں, رکوع کریں, اللہ کی بندگی, نیک کام, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد, نماز قائم, زکوٰۃ, اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونا, اور اپنی نسبت ابراہیم کے نام پہ خود کو مسلمان کہہ دو تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اتنا کچھ کرنا ہے ہم نے اس ایک پارے کو پڑھنے کے بعد, تو باقی باتوں کو کیا کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے, جو کر سکتے ہیں کر لے, نیتیں کرے. اس بارے میں جتنی دعائیں آئیں انبیاء کرام کے نام پہ ساری یاد کرے. کوئی تکلیف آتی ہے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اولاد نہیں ہے تو پڑھیے رب لا تذرنی فردی وانت خیر الوارثین. بیمار ہے تو پڑھیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, چلو پڑھ لیں گے ایک دو بار, فائدہ تو کوئی نہیں ہونا دوا سے. نہیں, جو دعاؤں پہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں سے بھی فائدہ دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے پارے میں ہم نے جو خلاصہ دیکھا اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہماری آنکھیں کھول دیں. اس پورے پارے میں ہم نے سورۃ الانبیاء کور کی. سورۃ الانبیاء کا پیغام کیا تھا؟ موت کی تیاری. وقت کم ہے, زندگی مختصر ہے اور کام زیادہ ہے, غفلت سے نکلنا ہے. پھر قرآن میں ہمارا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دیا. اس کائنات کو مقصد سے پیدا کیا, کوئی اس کائنات کو چھٹلا نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا. پھر آپ دیکھیے اس پوری صورت میں ہم نے توحید کی اور کائنات کی بہت ساری حقیقتیں دیکھی. پھر سائنسی فگرز ہم نے کتنے پڑھے, توحید, نبوت, اور اللہ کے نبی کا ساری امت کے لیے رحمت للعالمین ہونا. اور بھی سورہ حج میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ ہو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم چنے ہی رہیں. حج کے حکم پڑھے, قربانی کے پڑھے. قربانی کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کی آیت اس صورت میں پڑھی. جہاد کی حکمت بتا دی کہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو. پھر اللہ کے احسانات, اس کی نعمتیں. کس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت کے آخر میں کامیابیوں کی بات کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح کامیابیاں پانے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.